तो प्रधानी भूता योग मिश्रित भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का सुमरण, तो ये 5 श्लोक हो जाएंगे। तो 2 श्लोक साथ में हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अन्यांसम अनुसमृदय सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्य वरणं तमस्य प्रस्ताः प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य संयः सतम पुरुषम उपैति दिव्यम प्रयाण काले। प्रयाण काले का मतलब अंत समय में, जब अंतिम प्राण शरीर से विसर्जन होने वाला हो उस समय, यह भक्त्या युक्तो, जो व्यक्ति भक्ति से युक्त है, अचलेन मनसा, अपने मन को एकाग्र किया हुआ है, विचलित मन नहीं है, इधर उधर नहीं भागता है, और क्या करेगा, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक, अच्छी तरह से अपने प्राणों को दोनों भ्रुवों के बीच में जो स्थान है उसका नाम है आज्ञा चक्र। क्या नाम है? दोनों भ्रुवों के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर अपने प्राण को स्थित करे। कैसे करे? योग बलेन, योग के अभ्यास से, योग के बल के ऊपर। और तब क्या करे? अनुसमृद, और मेरा अनुसमरण करे। अनुसमरण करे किसका? नहीं, अब यहां लिखा है किसका अनुसमरण करे, ये है पहली लाइन। कवि का स्मरण करे, कवि का मतलब सर्वज्ञ, कवि का क्या अर्थ है? भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला सर्वज्ञ। पुराणम का मतलब आदि पुरुष। अनुशासितारम का अर्थ है नियंता, उपदेष्टा, उपदेश करने वाला, नियंता भी और उपदेष्टा भी। तो ये 3 है विशेषण जिसका ध्यान करना है या जिसका स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? कवि का करना है, पुराण का करना है, अनुशास्तिराम का करना है। ठीक है, बोला जिसके स्मरण करें वो कितना छोटा है? बोला छोटे से भी छोटा है। हाँ, क्या लिखा है देखो, अणोर अण्यांसम, अणु से भी छोटा है। आत्मा तो बाल के अगर भाग के 10,000 के 10,000 के समान है, उसके हृदय में प्रवेश कर जाता है, इतना छोटा है। तो वो है छोटू, छोटे में सबसे छोटा, और परंतु है सर्वव्यापक, सर्वस्य धातारम, सबको धारण किया हुआ है, सब उसी के आधार के ऊपर टिके हुए हैं, है छोटे से छोटा परंतु बड़े से बड़े सब लोगों को धारण किया हुआ है। सर्वस्य धातारम, बोला ये कैसे समझ में आए, छोटे से छोटा भी है और सर्व सबको धारण करने वाला बड़े से बड़ा भी है। बोला अचिंत्य रूपम, तो मुख्य बात क्या है प्रभुपाद के तात्पर्य में, एक शब्द मुख्य है कि भगवान का रूप है, भगवान निर्विशेष नहीं है, भगवान शून्य नहीं है, अचिंत्य भगवान का रूप है। ये भगवान का रूप कैसा है, बोला अचिंत्य है। अचिंत्य की परिभाषा हमारे तात्पर्य में आएगी, अचिंत्य किसको कहते हैं ये हमको समझना है आज, ठीक है। अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, वैसे वर्ण का उसका अपना एक स्वरूप है, स्वतंत्र स्वरूप है, जो सूर्य के समान अपने आप प्रकाशमान है, आदित्य के समान जिसका स्वतंत्र स्वरूप है, आदित्य वर्णम। वर्ण शब्द शब्द का अर्थ क्या लिखा है, आदित्य जो सूर्य के समान प्रकाशित है, वो स्वतंत्र रूप है उसका। अब है तमस परस्तात का मतलब जो प्रकृति के अंधकार से परे है, तमस परस्तात, तमस का मतलब प्रकृति का अंधकार, उससे है परे। ऐसे सतम पुरुषम, सतम परम पुरुषम उपायति दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करेगा योगी, इसका मतलब उसके धाम में जाएगा। ये श्लोक का अर्थ हुआ। अब इसका अनुवाद श्री प्रभुपाद जी का पढ़िए। मनुष्य
को चाहिए कि परम पुरुष का बिना सर्वत्र उदारता, नियंता, लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति वेदवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में।
तो सूर्य के ना भौतिक प्रकृति, सूर्य के वो सूर्य, सूर्य की भांति तेजवान है। देखो सारे शब्द इसमें आ गए श्लोक के। अब देखा हर एक श्लोक का शब्द इसमें प्रभुपाद ने अच्छी तरह से दिया है, ठीक है। अब हम चक्रवर्ती पाद के भाव को पढ़ के फिर प्रभुपाद जी के भाव को समझेंगे। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आपको मिलेगा। अब मैं बता रहा हूँ चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि योग अभ्यास के बिना, योग के अभ्यास के बिना मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना असंभव है, मुश्किल है, कठिन है। और मन को इंद्रियों के विषय से नहीं हटाएंगे तो भगवान का ध्यान करना भी दुर्लभ है। पहला तो ये एक सिद्धांत देते हैं बिना किसी प्रकार। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य दिया, चाहे षट चक्र योग हो, चाहे भक्ति योग हो, बिना योग अभ्यास के कोई भी मन को इंद्रियों के विषय से हटाकर भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। तो क्या हुआ, ये सिद्धांत हुआ बिना योग अभ्यास के, कोई भी योग हो, भगवान का ध्यान करना और मन को इंद्रियों के विषय से हटाना कठिन है, पहली बात। इसलिए भक्ति के साथ कोई योग का अंग करना चाहिए। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, इसलिए आने वाले पांच श्लोकों में इसको जो ये दो ये हैं तीन और योग मिश्रित भक्ति का वर्णन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो 9 से लेकर 9, 10, 11, 12, 13 ये है योग मिश्रित भक्ति, और 14वां है इससे तुलनात्मक शुद्ध अनन्य भक्ति, 14वें में है शुद्ध अनन्य भक्ति। तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आज क्या हमारा विषय है, योग मिश्रित भक्ति। अब उन शब्दों का अर्थ लिखे हैं। कवि किसको कहते हैं जो सर्वव्यापक है, अब कहते सर्वव्यापक तो बहुत हो सकते हैं भाई, योगी भी सर्वव्यापक है, भूत भविष्य वर्तमान को जा सकता है, सनक आदि कुमार भी सर्वव्यापक हैं, योगी हैं। बोला केवल सर्वव्यापक नहीं है परंतु पुराणम है, वो पुराण नहीं है, ये अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है। तो केवल कवि से काम नहीं चलेगा, पुराणम साथ में है, तो पुराण साथ में आने से जो अन्य योगी कवि हैं वो कट जाएंगे, क्योंकि वो सब पुरातन नहीं है। अच्छा, पुरातन भी कोई है, हाँ जैसे जीवात्मा भी पुरातन है, अनादिकाल से चल रहा है, परंतु भक्ति का उपदेशक तो नहीं हो सकता है। ये अनुशासित तरम का अर्थ है कि भक्ति का उपदेशक परमात्मा नहीं हो सकता। तो ये तीन विशेषण है भगवान का जिसको ध्यान करना चाहिए, कवि पुराणम अनुशासित। इसलिए भगवान को अनुशास्तिराम अनुशास्ति शास्तारम कहते हैं, उसका अर्थ है आध्यात्मिक गुरु जो शिक्षा देते हैं भक्ति के विषय में। परंतु जो स्वयं आते हैं कृष्ण राम के रूप में तो स्वयं इस शिक्षा को स्वीकार करते हैं और दूसरों को देते भी हैं, उदाहरण बनते हैं। फिर लिखते हैं क्यों देते हैं शिक्षा, बोला दयालु है, दयालु है इसलिए शिक्षा देते, बहुत बड़े दयालु हैं। फिर कहते हैं भले वो दयालु हैं फिर भी उनको समझना बहुत मुश्किल है, बोला क्यों, बोला छोटे से छोटा है कैसे समझोगे, वो तो आत्मा से भी सूक्ष्म है उसको कैसे समझोगे, वो आत्मा से भी सूक्ष्म है तो उसको समझोगे कैसे। बोला इतना भी नहीं है, वो सर्वव्याप सर्वत्र सर्वत्र विस्तृत है, सर्वस्य धातारम, सभी कुछ उसी में समाया हुआ है, सबको उसने धारण करके रखा है और इसलिए वो अचिंत्य रूप है, उसका रूप इसलिए अचिंत्य है। अब कहते हैं सीधी बात करते हैं, भला बीज न छोटा न बड़ा मानव जैसा लग रहा है श्री कृष्ण राम, परंतु वो इस सारी भौतिक प्रकृति से परे है, तमस परस्तात परे है ना, भले छोटा लग रहा है मानव जैसा लग रहा है लेकिन मानव नहीं है, और इसलिए उसको रूप है, वर्ण है, वर्ण का एक अर्थ रूप भी है। और कैसा उसका वर्ण है, बोला सूर्य जैसा आदित्य वर्ण है। बोला काम क्या है सूर्य का, क्या काम है सूर्य, क्या करता है, बोला अपना भी प्रकाश करता है और संसार को भी देखने की शक्ति देता है। ये उदाहरण आपको याद है, एक बार दिया था भगवान सूर्य उदय उगे होने से, सूर्य को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं और दुनिया को देखते हैं। तो यहां वो भाव लिखा है, ये भगवान कैसा है, बोले सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित होता है तो अपनी शिक्षा दे के दूसरों को भी भगवान को समझने का शिक्षा देता है। तो यहाँ लिखा ये है, अपने आप को भी प्रकट करता है और दूसरों को भी प्रकट करता है। तो अपने को देख सकते हैं सूर्य उगता है, जगत को देख सकते हैं, ऐसे भगवान आदित्य वर्ण में स्वयं प्रकाशित, सबको प्रकाशित कर कैसे शिक्षा देकर। वो माया का स्वामी है, माया शक्ति उसकी है, परंतु वो माया शक्ति से परे है, तमस परस्ता। अंत काल में अचले न मनसा, मन को एकाग्र करके जो उनका सुमरण करेगा तो उसको वो योगी प्राप्त करेगा। बोला वो मन को एकाग्र कैसे करे, मन को अचले न कैसे करे, तब कहते हैं योग बलेना, कैसे करें, योग के बल से, योग के अभ्यास के बल से, योग के अभ्यास से बल से उसको मन को कैसे अचल करें, मन को अचल कैसे करें, योग के अभ्यास से बल से। तो बताइए तो वो योग का कैसा साधन कौन सा है जिसका अभ्यास करें, तब कहते हैं आज्ञा चक्कर पे प्राणों को एक स्थित करे आज्ञा चक्र पे दोनों भ्रुवों के बीच में प्राण को स्थित करे। यह है योग का साधन। तो 13वें श्लोक में कहा जाएगा कि भगवान को प्राप्त करने का मतलब भगवान का लोक, भगवान के लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करना। अब श्रील प्रभुपाद जी का अपना पुस्तक खोलिए, इस श्लोक में भगवान के सुमरण का साधन या विधि बताई गई है। क्या बताया गया है? भगवान के चिंतन की विधि बताई गई है, सुमरण के विधि बताइए एकदम। प्रभुपाद जी कहते मुख्य बात क्या है, भगवान न तो निर्विशेषवाद है और न शून्यवाद है। देखो दोनों शब्द लिखा है, निर्विशेष और शून्यवादी नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी क्या एक बात कहते हैं, कोई निर्विशेष और शून्य का तो ध्यान हो ही नहीं सकता। भाई ध्यान क्या करोगे शून्य का और निर्विशेष का, नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान करना है तो भगवान निर्विशेष और शून्यवादी नहीं है, उसका स्वरूप होना चाहिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण का चिंतन या स्मरण बहुत आसान है और वास्तव में यह समझाया गया है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, भगवान एक व्यक्ति है, भगवान एक पुरुष एक व्यक्ति है। जैसे भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण नाम लेते हैं तो उनका रूप आता है। कृष्ण कहते हैं बांसुरी, राम जी कहते हैं धनुष बाण हाथ में, तो उनके रूप का चिंतन अपने आप हो जाता है। कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का करे, कैसे करें वो इस श्लोक में बताया गया है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं चाहे राम का करो चाहे कृष्ण का करो, उनकी विशेषता क्या है, पहले तो वो कवि है। अब कवि को सर्वव्यापक को प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। ये है कवि की परिभाषा। और दूसरा पुराणम, दूसरा वो पुरातन है, वो सबका स्रोत है, सब कुछ उससे ही निकलते हैं, सबको पैदा करने वाला है। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अनुशासितारम का अर्थ, वो अनुशासिता का मतलब है परम नियंता है, जगत का परम नियंता है और उसका पालक भी है और शिक्षक भी है। तो तीन अर्थ लिखे हैं प्रभुपाद जी ने अनुशास्तराम के। अनुशास्तराम के तीन अर्थ क्या है, पहला क्या है, जगत का परम नियंता परम ईश्वर, दूसरा जगत का पालक और तीसरा जगत का शिक्षक अध्यापक। अब अणोरणिया सम की बात कर रहे हैं, वो छोटे से छोटा है, जीव कितना छोटा है उसके हृदय में प्रवेश करता है तो कितना छोटा होगा, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। वो इतने छोटे होते हुए भी सर्वव्यापक है और सबको सबका पालन करते हैं, सबका धारण करते हैं। धात सर्वस्य धातारम की अर्थ है ये, सारे ब्रह्मांड के लोकों को वो धारण करते हैं, इतने बड़े लोक हैं उसमें भगवान प्रवेश करते हैं, इसलिए वो अपनी स्थिति उस भी अपनी जगह पे खड़े हैं, नहीं तो वो अपनी जगह पे खड़े नहीं रह सकते। अब अचिंत्य की परिभाषा प्रभुपाद की सुन लीजिए, अचिंत्य, अचिंत्य का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, भगवान की शक्ति हमारे चिंतन से परे है, हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच के परिधि से परे है, दायरे से परे है, इसलिए उसको अचिंत्य कहते हैं। तो पहले अचिंत्य का कारण क्या हुआ, हमारी सोच के परिधि से परे है। दूसरा, कौन उसके विषय में तर्क कर सकता है, इसका मतलब तर्क से परे है। वो सारे भौतिक जगत में प्रविष्ट है, क्या तर्क करो। हम इस भौतिक जगत को भी नहीं जान सकते हैं जो छोटा सा है आध्यात्मिक जगत की तुलना में, तो उससे परे भगवान को कैसे जान सकते हैं। तो अचिंत्य का, अब दोबारा प्रभुपाद, इसका मतलब अचिंत्य का अर्थ है, अचिंत्य का अर्थ है भौतिक जगत से परे, एक। और दूसरा, तर्क वितर्क से या दर्शन और सिद्धांत के चिंतन से जिसको न समझा जा सके। तो आप अचिंत्य की परिभाषा क्या है श्लोक संख्या 9 और 10 में, ये आप छोटा सा एक नोट बना लीजिए अपने लिए, तो आपको पता लगे कि अचिंत्य की परिभाषा क्या होती है। हमारी सोच से परे, भौतिक जगत से परे, तर्क वितर्क से परे, दर्शन सिद्धांत से परे, उसको कहते हैं अचिंत्य। और प्रभुपाद जी तर्क क्या दे रहे हैं, भौतिक जगत हमारे सामने है वो तो जानते नहीं है, तो इससे परे आध्यात्मिक जगत को कैसे जानेंगे, और उससे परे भगवान को कैसे जानेंगे जो उससे भी परे है। सो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को वैरथ के तर्क वितर्क को त्याग कर मन से संकल्प विकल्प करना छोड़ के वेद, भगवद गीता, भागवत जैसे शास्त्रों का अनुशीलन करना चाहिए, उन्होंने जो सिद्धांत स्थापित किए हैं उनको मानना चाहिए, तभी हम भगवान को समझने में आगे बढ़ सकते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है अंत समय भक्ति से परम पुरुष भगवान के ऊपर मन को केंद्रित करना चाहिए। भक्त्या, योग बलेन भक्त्या, और जो योग का अभ्यास करते हैं उनके लिए कहा गया है कि आज्ञा चक्कर पे अपने प्राण को स्थित करो। तो अब प्रभुपाद जी अब क्या कर रहे हैं, भक्ति वालों को अलग कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति वालों को योग मिश्रित भक्ति से अलग कर रहे हैं। कहते हैं षड चक्कर योग जो है उसमें 6 चक्रों का ध्यान किया जाता है, और शुद्ध भक्त को इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भावना ही अपने आप में परिपूर्ण है, अंत समय भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण की कृपा से सुमरण हो जाएगा, ये श्लोक में, ये 14वें श्लोक में कहा जाएगा ये बात 14। तो षड चक्कर कौन से है, नाम तो आने चाहिए ना हमको थोड़े बहुत। एक चक्कर बताया, कौन सा बताया, आज्ञा चक्कर। तो बाकी 5 चक्कर कौन से हैं, मूलाधार, नीचे से आएगा ना मूलाधार, तो नीचे है। उसके बाद नाभि में कौन सा है, अनंत है क्या नाम उसका, देख इनके नाम क्या है। फिर छाती में है, हृदय में है, फिर कंठ में है, फिर ये भ्रुओं के बीच में, और अंत वाला ये है कपाल के, इसको ब्रह्मरुद्र, यहाँ से बाहर जाता है। तो चक्रों के नाम ढूंढो, सहस्रा तो ये है, इसको ब्रह्मरुद्र भी कहते हैं, सहस्र भी कहते हैं, जहाँ से प्राण अंत में योगी अपना निकालता है। तो पहले नीचे सबसे है गुदा के, वहाँ उसको कहते हैं मूलाधार, और दूसरा आ गया, हमको 2 आ गए नाम, बाकी 20 के अधिष्ठान है, मणिपुर है, पता नहीं, हाँ जी ढूंढो, जो नाभि के पास है उसका क्या नाम है, ये मां नाभि के बाद हृदय पे,
योगिनी,
भाई कहीं हम प्रचार करने जाएं, हम कहें छठ चक्कर भी, तो वो पूछे कौन से चक्कर है, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे हमको चक्कर में पड़ना ही नहीं। बोला हम एक चक्कर जानते हैं, सुदर्शन चक्कर, बस उसका शरण ले लिया सब काम हो गया, बाकी चक्कर समाप्त। ऐसे कह कहते हैं बेटा, इसको ढूंढ के सबको व्हाट्सएप में भेज दो, छह चक्रों के नाम ढूंढ कर सबको भेज दो यादगिरी के लिए, नाम आने चाहिए। लंबा सांस लेते हैं, ओम का उच्चारण करके नीचे से ऐसे प्राण को ऊपर ले जाते, ओ ऐसे ऊपर ले जाना चाहते हैं, ये उनका अभ्यास होता है। एक हमारे यहाँ अभी तो आश्रम में भक्त है, पहले वो कह रहे थे कि बुद्ध मॉनेस्ट्री में रहते थे, बुद्धों के वहाँ बुद्धिस्ट, बोलते ऐसे बिठाते थे हमको आगे, यहाँ कीला होता था, नींद आएगी तो वो लगेगा, और जब और जगह बहुत कम होती और थोड़ी ऐसी आई तो पीछे डंडा लगता था, और ओम का उच्चारण करके ऐसे ध्यान करना सिखाते थे, वो डंडा मारते थे पूरा जो खाल उतर जाए ऐसा, बहुत बहुत सख्त नियम था वहाँ। ये भक्त हमारे पास आश्रम में रहा हुआ है जो वहाँ से अभ्यास करके आया, बोला उनके पास सिद्धि होती है, हमने देखा वो आसन उनका धरती से 2 फुट ऊपर खड़ा होता है, वो पानी पे चल जाते हैं, सिद्धियाँ हैं उसके पास, परंतु कोड़े लगते हैं अभ्यास करते समय। थोड़ा सोया नहीं, डंडा आया नहीं, आ गए चक्कर लाइए। मूलाधार चक्र स्वाधिष्ठान मणिपुर अनहद हृदय तक, ये हृदय में विशुद्ध चक्र आज्ञा चक्र और सहस्र धार, क्या नाम हो गए चक्रों के जी? तो नीचे जो मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनहद, फिर विशुद्ध, और फिर आज्ञा, और फिर सहस्रा सह न धार, सहस्र धार है क्या? मूला मूला नीचे धार, और छाती में जो है वो तो है सीधा सा अनहद अनहद। अभी एक ने भाषा क्या लिखी है मैं पढ़ूं, आप परेशान नहीं होना। मूलाधार का मतलब मैं हूं, क्या मैं हूं भगवान जाने, और स्वाधिष्ठान का मतलब मुझे लगता है, मणिपुर का मतलब मैं करता हूं, अनहद मैं प्यार करता हूं किससे, और विशुद्ध गले में है मैं बोलता हूं, आज्ञा आंखों के बीच भिरुओं के बीच में मैं देखता हूं, और सहस्रधार है मैं समझता हूं। तो भाई समझो बैठ के, चलो 6 चक्रों के नाम बता देना उनको, और उनको पहले की माना बताना, बोला तुम यही हो अगर नहीं कृष्ण भावना में आओगे तो। मैं हूं मूलाधार। प्रभुपाद कहते हैं योग बलेन जो लिखा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसी न किसी योग का अभ्यास करना ही पड़ेगा, षड चक्र करो या भक्ति करो, बिना योग अभ्यास के कोई भी दिव्य स्थिति को प्राप्त अंत समय नहीं कर सकता। अचानक भगवान का स्मरण हो जाए अंत समय, यह संभव नहीं है। योग अभ्यास करना ही पड़ेगा, और विशेष रूप से भक्ति योग का अभ्यास, क्योंकि मन अंत समय बहुत विचलित रहता है। इसलिए दिव्य योग के अभ्यास करने की जीवन भर आवश्यकता है। अब मानो भगवान ने कहा योग अभ्यास करो अंत समय मेरे पास आओगे, बस योग करें कैसे और इसका साधन क्या है, आज्ञा चक्कर में कैसे पहुंचे, तो ये श्लोक बोला जा रहा है उसके लिए। यदाक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यदयत्यवीद रागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षयि। संग्रहण का मतलब जो साधन के साथ, योग के साधन के साथ भगवान कहते तत्ते पदम प्रवक्षामि, मैं उस विषय में आपको अब समझाने जा रहा हूं कि इस योग का अभ्यास कैसे करना है। यद अक्षरम वेद विदो वदंती, जिसको वेद के जानने वाले ओम कहते हैं, यहां अक्षर का अर्थ है ओम, ओम इति एकाक्षरम, यहां ये आगे आएगा तो अक्षर कहते हैं ओम को, वेद में जिसको ओम कहते हैं वो अक्षर है। और विशंति यद यति यो वीतराग, यति का मतलब सन्यासी, वीतराग को त्याग करके और जिन्होंने सब छोड़ दिया है, और यद इच्छन्ति उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं और वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। अब पढ़िए अनुवाद। वेदों के ज्ञाता हैं जो वेद विशंतो, अक्षर की माना है ओमकार,
और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े
ठीक है, ये है यति का अर्थ, यति का अर्थ है सन्यासी।
वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का विनाश करते हैं।
बस हो गया।
अब मैं तुम्हें वक्त भी बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है।
तो भगवान ये विधि बताने जा रहे हैं कि ये योग का अभ्यास कैसे किया जाए। ठीक है, चक्रवर्ती पद कहते आपने कहा प्राणों को आज्ञा चक्कर में स्थित करो, बताओ तो ये योग का अभ्यास किया कैसे जाता है, ये प्रश्न उठते हैं, उठाया गया है, ये योग कैसे होता है, क्या जपना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए और योग से क्या प्राप्त होगा। चार प्रश्न चाहिए, क्या योग कैसे किया जाए, क्या जपा जाए, किसका ध्यान किया जाए और क्या प्राप्त हो, ये चार चीजें। और इन चारों के लिए आने वाले तीन श्लोकों में उत्तर दिया गया है। तो अब जो इसके बाद तीन श्लोक हैं, ये एक और दो दूसरे, तो उसमें इन चार बातों का उत्तर दिया गया है, क्या जपना, कैसे करना, किसका ध्यान करना और क्या लाभ। ठीक है, संग्रह का अर्थ है जिसके द्वारा सम्यक सम्यक ग्रह्यते, सम्यक ग्रह्यते पूर्ण रूप से किसी को जाना जाए उसको कहते हैं संग्रह। संग्रह में एक शब्द है सम्यक, मतलब पूर्ण रूप से, और दूसरा है ग्रह, ग्रह्यते पूर्ण रूप से किसी चीज को समझना, उसको कहते हैं संग्रह। संग्रहण का मतलब पूर्ण रूप से समझने की विधि आपको सिखाने बताने जा रहा हूं। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं प्राणों को आज्ञा चक्कर में कैसे स्थित करूं। अर्जुन कहता है मैं नहीं समझ सकता हूं। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। वही बातें, क्या जपना है, किसका ध्यान करना है, क्या लक्ष्य है, वही बात है। भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। वेदों का, वेदों को जानने वाले ओंकार के को अक्षर ब्रह्म कहते हैं, और सन्यासी अज्ञानता वीतराग को त्याग करके उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म को, और उस ब्रह्म को ओम के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्म के जो जो ब्रह्म के जिज्ञासु हैं, जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ब्रह्म के रूप को जानना चाहते हैं, वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, गुरुकुल में रहते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि उनको क्या प्राप्त होगा और कैसे होगा संग्रहण, और फिर आप आसानी से इसको जान जाओगे। संग्रहण का अर्थ वही लिखा, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को षडचक्र योग के अभ्यास के द्वारा प्राणों को भिरुओं के बीच में आज्ञा चक्र में स्थित करने का उपदेश किया, सिफारिश की कि ऐसे करो। अर्जुन समझ रहा है ये कैसे षडचक्र होगा, भगवान इसको जरा बताइए। तो भगवान ये श्लोक में उसके अभ्यास का वर्णन कर रहे हैं। जो ब्रह्म है, जो एक है, दो हो नहीं सकते, उसके बहुत सारे विस्तृत रूप हैं। विशेष रूप से निर्विशेषवादी उसको अक्षर या ओमकार कहते हैं, और वो ब्रह्म का सदृश है। तो ओम और ब्रह्म एक बात है, इसका अर्थ ये, ओम और ब्रह्म एक बात है। किसके लिए? निर्विशेषवादियों के लिए। और भगवान श्री कृष्ण यहां उस निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करना चाहते हैं। वेदों को जो ज्ञान है, उसमें जो जो छात्र होते हैं उनको आरंभ से ही ओम का उच्चारण करना सिखाया जाता है कि ये निराकार ब्रह्म है, और वो गुरु के आश्रम में ब्रह्मचार्य का पालन करता है। अब एक लाइन है, ये ध्यान से पढ़ो, जरा निकालो लाइन को। नहीं, अब इसके बाद एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वो दो ब्रह्म के स्वरूपों का अनुभूति करता है। अब ये दो कौन से ब्रह्म के स्वरूप है, बोलिए? क्या इस प्रकार वो ब्रह्म के दो स्वरूपों का साक्षात्कार करता है। इससे आगे दोबारा आगे पढ़िए। इससे वेदों के प्रणाली में गुरु के आश्रम में शिष्य को ओम का उच्चारण करना सिखाया जाता है, एक बात। उसके द्वारा क्या करना है, दूसरा, उसके द्वारा क्या करना है, निर्विशेष ब्रह्म उनका जो अंतिम लक्ष्य है उसके विषय में सिखाया जाता है। तो दो हो गए कि नहीं? ओम स्वयं अक्षर ब्रह्म है, और उसके द्वारा उनको जानना क्या है, निर्विशेष ब्रह्म। तो ये दो ब्रह्म हो गया ना, ये दो ब्रह्म ये हैं। जो आप कह रहे हैं ना, वो है असल में सच्चित आनंद जो है, उसमें ज्ञानी केवल सत का, योगी सत और चित्त का, और भक्त सच्चित आनंद, तीनों की अनुभूति करते हैं, वो दूसरी बात है। तो यहाँ दो ब्रह्म कौन से हो गए जिसकी अनुभूति होगी, अक्षर ब्रह्म ओंकार और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति। इन दो की अनुभूति होगी। ठीक है, ये लाइन जो है थोड़ी सी ध्यान दे के दोबारा पढ़ने की है। और ये अभ्यास उन के उन्नति के लिए आवश्यक है, और जब तक वो ब्रह्मचारी हैं, अब प्रभुपाद जी कहते ब्रह्मचारी रहना बहुत मुश्किल है। अब प्रभुपाद जी उसके लिए कारण दे रहे हैं, इस वक्त जो सामाजिक ढांचा है इतना परिवर्तन हो चुका है कि कोई भी ब्रह्मचार्य का पालन 5 साल की आयु से नहीं कर सकता। ये प्रभुपाद जी सामाजिक ढांचा लिखा है, क्या लिखा है इसमें? हाँ, ढांचा, ठीक है। तो ब्रह्मचारी अब सारे विश्व में बहुत सारे ऐसे शिक्षा के स्थान हैं, ज्ञान प्राप्त करने के अलग अलग विभाग हैं, परंतु एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां ब्रह्मचार्य के नियम को सिखाया जाए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ब्रह्मचारी की शिक्षा अलभ्य है, नहीं मिलती है कहीं भी। हम पढ़ते थे, उसको समझ लिया आज से हो गए 60 साल पहले, तब स्कूल में ब्रह्मचार्य के लिए कहते थे लंगोट पहनो। स्कूल में मास्टर एक स्पेशल सिखाता था, तब ये दिमाग में थोड़ा था, वो पुराना कल्चर जो गुरुकुल का था वो था, वो वीरज की रक्षा करनी है, ये सिखाया जाता था कि ब्रह्मचारी की परिभाषा समझाई जाती थी। लेकिन अब ये नाम, इसका नाम निशान कहीं नहीं। ये शब्द ही ब्रह्मचार्य किसी को पता नहीं होता क्या है, कौन से जानवर का नाम ऐसे बोलते हैं, किसी को पूछा आजकल स्कूल में ब्रह्मचार्य के, बोला ये कौन सा पशु है, पता ही नहीं है क्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये एम्स का एक प्रोफेसर था आंख वाला, वो ब्रह्मचार्य के विषय में एक दिन मुझे कह रहा था कि जितनी शक्ति एक समय वीरज खलित होने में होती है, वो शक्ति एक 60 वाल्ट का बल्ब जला सकती है। बल्ब का बल्ब जो है ना, उसमें प्रकाश करे, इतनी उसमें शक्ति होती है, जो उसके अंदर शक्ति बनाने की शक्ति है ना, वो ऐसी होती है। तो बताइए कि कितना शक्ति है, एनर्जी हमारे अंदर है। यही तो वो साधु पुराने इसको ऊर्ध्वरेता ऊपर ले जाते थे तो ये सब चीज़ें उनको समझ में आती थी। तो इसलिए ब्रह्मचार्य बहुत आवश्यक है। जब तक कोई ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करेगा, आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होना बहुत कठिन है, लिखा है यहाँ। आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कली काल के लिए कहा है कि भगवत साक्षात्कार का एकमात्र मार्ग है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब षड चक्र के अक्षर का उच्चारण के बाद अब 2 श्लोक और आ रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मन प्राणम आस्तितो योगधारणा ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मा मनोसम्राट् यः पश्यति त्यजन् देहं यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं यः प्रयाति त्यजन् देहं देह के त्याग के समय क्या करना चाहिए? सर्व द्वाराणि संयम है, उस समय अपने सारे नौ द्वारों को संयम में करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मनो हृदय निरुद्ध चाहिए, मन को हृदय के ऊपर केंद्रित करना चाहिए। हृदय में परमात्मा होता है, उसके ऊपर केंद्रित करना चाहिए। और प्राणों को आज्ञा चक्र में स्थित करना चाहिए और पूर्ण रूप से मेरा ध्यान करना चाहिए और ओम का उच्चारण करना चाहिए। ध्यान मेरा करना चाहिए और उच्चारण ओम का करना चाहिए। भगवान कहते हैं ध्यान मेरा करना चाहिए, ओम इति एकाक्षर व्यान माम अनुसमरण, सुमरण अनुसमरण मेरा करो और उच्चारण ओम का करो। एकाक्ष ओम इति एकाक्षर और माम अनुसमरण, मेरा सुमरण निरंतर करो, तब मेरे लोक को प्राप्त करोगे। स याति परमाम गति, मतलब मेरे लोक को प्राप्त करोगे। आगे वाले श्लोक को आगे विस्तार से समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सारे द्वारों को बंद करना, आंखों से देखना नहीं, कानों से सुनना नहीं, नाक से सूंघना नहीं, मुंह से बोलना नहीं, ये सारे द्वारों को बंद करना है। और फिर क्या करना है? हृदय को मन के ऊपर केंद्रित करना है और प्राण को आज्ञा चक्र के ऊपर स्थित करना है और मेरा ही शरण लेना है। योग धारणा, मेरा योग के धारणा से शरण लेना है और ओम का उच्चारण करना है, मेरा ब्रह्म के रूप में ध्यान करना है। और ऐसा जो शरीर छोड़ेगा सालोक्य मुक्ति प्राप्त करेगा। जैसे तीन प्रधानी भूता भक्त सातवें अध्याय में कर्म मिश्रित ज्ञान मिश्रित योग तो ये है, वहां तीन थे, आठ तो जिज्ञासु वाले जो थे वो जिन को जो उनको गति मिली वो इसको भी मिलेगी, तो सारूपया हो जाएगा, सालोक्य सारूपया दी। ये नहीं, ये योग में से प्रधानी भूता है, ये भगवान के धाम जाएंगे। बाहर के तो दरवाजे बंद किए लेकिन मन का दरवाजा मेरे ऊपर उससे ध्यान करो, अंतःकरण से मेरा ध्यान करो, हृदय में। अपने हृदय कमल में प्राणों को आज्ञा चक्कर में मेरा ध्यान हृदय में करो, प्राणों को आज्ञा चक्कर में ले जाके स्थित करो और फिर मूर्धन्य आधाय ओ सुषुमा, ऊपर जाती है ऐसे उसको ऊपर ले जाओ, जैसे गुरु ने सिखाया है, प्राणों को यहां से बाहर निकालो। योग धारणम आत्मनः, भगवान का चरण से लेकर मुकुट तक ध्यान करना है। अंदर ओम का उच्चारण करे, वो ब्रह्म का प्रतीक है। ओम को एक अक्षर कहा गया है क्योंकि ये मुख्य शब्द है, अविनाशी है। और ध्यान करे किसका? अनुसमरण मतलब ध्यान करे मेरा परमात्मा के रूप में। और शब्द के रूप में कहा गया, हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आएंगे। ऐसे अगर शरीर छोड़ा तो मुक्ति मिलेगी, मेरे धाम में सालोक्य को प्राप्त करेगा। श्री प्रभुपाद लिखते हैं ओम ब्रह्म और भगवान श्री कृष्ण भिन्न नहीं है। क्या लिखा है? ओम ब्रह्म और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है। ऐसे कोई और तीन चीजें एक हैं, कोई भेद नहीं है। एक भजन हम गाते हैं, कौन सा? ओम नहीं है उसमें, लेकिन एक भजन गाते हैं उसमें तीन एक है। हाँ जी, हाँ ये ठीक है। एक भजन गाते हैं, कौन सा? से जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ बोलते हैं ना, जैसे ऐसे ये लिखा है, वो तीन एक है। हाँ स ओम ब्रह्म जय जय ब्रह्म से ओम से कृष्ण पर जपो श्री कृष्ण, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के निराकार शब्द रूप को ब्रह्म ओम कहा जाता है और हरे कृष्ण मंत्र में ओम समाया हुआ है। हरे कृष्ण मंत्र में ओम समाया हुआ है। हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे जो इस युग के लिए निर्धारित है, और ऐसे करते हुए अगर शरीर त्याग दिया, त्यागते समय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक में जाएगा, उसके साधन के अनुसार। इसका मतलब क्या? साधन के अनुसार का मतलब जाए, जपेगा हरे कृष्णा फिर भी जाएगा साधन के अनुसार, इसका मतलब क्या? जिस भाव का होगा उधर जाएगा, एक बात। जो उपासक है लक्ष्मी नारायण का वो तो जाएगा वैकुंठ, जो सीताराम का उपासक है वो साकेत जाएगा, और राधा कृष्ण का उपास है तो राधा कृष्ण के लोक में जाएगा। सख्य भाव का है तो सख्य भाव को प्राप्त करेगा, दास्य है का तो दास्य प्राप्त करेगा। इसका अर्थ ये। अब प्रभुपाद कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन जाएंगे, और भी जितने साकारवादी हैं उनके लिए भी अनंत लोक हैं जिनको वैकुंठ कहते हैं, और निराकारवादियों के लिए केवल ब्रह्म ज्योति है। यह हमारा आज का विभाग पूरा होता है। अब 14 से 16 तक शुद्ध भक्ति का वर्णन होगा, कल करेंगे। 14 से 16 शुद्ध अनन्य केवला भक्ति। तो अब हमारे पास समय है 20 मिनट का, 25 मिनट का, दो ग्रुप अपना प्रश्नों का भाव अब प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्ण।